कॉपर वह धातु जिससे बिजली और एआई से चलने वाली यह सदी बनेगी। कॉपर ने 2026 में रिकॉर्ड ऊंचाई छुई क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन, ईवी और अब एआई डेटा सेंटर्स उस आपूर्ति पर खिंचाव डाल रहे हैं जिसे खदानें इतनी तेजी से नहीं बढ़ा सकती। निकट अवधि का संतुलन, एक संतुलन जो सतह के नीचे कसता जा रहा है। निकट अवधि की तस्वीर सचमुच विवादित है और इसके बारे में सटीक रहना जरूरी है। 2025 में लगभग 178,000 टन के मामूली सरप्लस के बाद आधिकारिक इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप ICSG अब 2026 के लिए करीब 150,000 टन के छोटे डेफिसिट की उम्मीद करता है, जो अप्रैल में आंके गए लगभग 209,000 टन के सरप्लस से उलटफेर है और इसकी वजह खदान व्यवधान तथा कॉन्सेंट्रेट आपूर्ति का तंग होना है। कई निवेश बैंक इसे बहुत अलग ढंग से देखते हैं। UBS 2026 में लगभग 500,000 टन का डेफिसिट आंकता है और मॉर्गन स्टैनले भी कुछ वैसा ही। इसलिए क्या बाजार अभी डेफिसिट में है? यह सवाल एक तय तथ्य नहीं बल्कि जीवंत बहस है। जिस पर बहस नहीं है वह है लंबी अवधि का नजरिया और असली केस वहीं बसता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA चेताता है कि मौजूदा रुझानों पर दुनिया को 2035 तक कॉपर आपूर्ति में लगभग 30% की कमी का सामना करना पड़ेगा। वुड मैक का अनुमान है कि मांग पूरी करने के लिए 2035 तक लगभग 80 लाख टन बिल्कुल नई खदान आपूर्ति और 35 लाख टन अतिरिक्त रिसाइकलिंग की जरूरत होगी और वहां तक पहुंचने के लिए $210 बिलियन से अधिक का निवेश। और SP ग्लोबल देखता है कि 2040 तक यह अंतर बढ़कर सालाना 1 करोड़ टन 10 मेट्रिक टन की ओर जाएगा क्योंकि मांग आधी और बढ़ जाएगी। आप कोई भी पूर्वानुमान लें, वे सब एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। दुनिया जो चाहेगी और जो खोदकर निकाल सकती है उनके बीच एक संरचनात्मक अंतर की ओर। मांग पुराने चालक और एक ताकतवर नया। मांग की ओर ही कॉपर की कहानी सचमुच बदली है। जाने पहचाने स्तंभ अपने आप में काफी दमदार हैं। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लगभग 80 किलोग्राम कॉपर इस्तेमाल करता है जबकि एक पेट्रोल कार के लिए करीब 20 किलोग्राम यानी 4 गुना ज्यादा। और 2025 में ईवी बिक्री लगभग 2.16 करोड़ इकाई तक पहुंची। 1 मेगावाट सौर क्षमता को लगभग 5.5 टन कॉपर चाहिए और ऑफशोर विंड को 10 से 15। पर नया स्तंभ वही है जिसका मॉडल 3 साल पहले लगभग किसी ने नहीं बनाया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक अकेले बड़े AI डेटा सेंटर को उसके पावर वितरण और कूलिंग के लिए 50,000 टन तक कॉपर की जरूरत पड़ सकती है। और SP ग्लोबल के विश्लेषकों का अनुमान है कि अकेले डेटा सेंटर मांग 2030 तक सालाना 1.1 मेट्रिक टन 11 लाख टन की ओर बढ़ सकती है जो पूरे वैश्विक बाजार का लगभग 3% है। और 2040 तक 2.5 मेट्रिक टन 25 लाख टन की ओर लगभग शून्य से शुरू होकर। इन्हें उन पुरानी होती पावर ग्रिडों के ऊपर जोड़ दें जिन्हें विकसित और विकासशील दुनिया भर में फिर से बनाना होगा। और कुल कॉपर मांग आज लगभग 2.7-2.8 करोड़ टन 2040 तक 4 करोड़ टन के पार जाने का अनुमान है। चाइना अब भी दुनिया के लगभग 58% रिफाइंड कॉपर की खपत करता है पर वृद्धिशील वृद्धि बढ़ते हुए हर जगह के इलेक्ट्रिफिकेशन से आ रही है। आपूर्ति धीमी, कठिन और कठिनतर होती हुई। अगर मांग तेज हो रही है तो आपूर्ति उल्टा कर रही है और इसके कारण उतने ही भूगर्भीय हैं जितने वित्तीय। खोदे गए कॉपर अयस्क का औसत ग्रेड 1991 से लगभग 40% गिर चुका है, यानी खनिकों को उतनी ही धातु के लिए लगातार और ज्यादा चट्टान हटानी पड़ती है। बड़ी नई खोजें सूख गई हैं और किसी भंडार के मिलने से उससे उत्पादन शुरू करने तक का समय बढ़कर लगभग 17 साल हो गया है। इन धीमे संरचनात्मक दबावों के ऊपर 2025 और 2026 तीव्र व्यवधानों की एक श्रृंखला लेकर आए। सितंबर 2025 में फ्रीपोर्ट की विशाल ग्रासबर्ग खदान में एक जानलेवा मर्डर से 2026 में उसका उत्पादन लगभग 35% घटने की उम्मीद है। पूरी रैंप अप अब 12 से 18 महीने टल गई है और ऑपरेटर का समूह कॉपर बिक्री मार्गदर्शन घटाकर लगभग 3.1 बिलियन पाउंड कर दिया गया है। चिली में कोडेल्को की एल टीनियंट में एक घातक धनसाव ने 6 लोगों की जान ली और फर्स्ट क्वांटम की विशाल कोबर पनामा खदान 2023 से बंद पड़ी है। शायद सबसे साफ संकेत स्मेल्टरों से आता है, वह शुल्क जो खनिक प्रोसेसरों को कॉन्सेंट्रेट को धातु में बदलने के लिए चुकाते हैं, यानी ट्रीटमेंट चार्ज 2026 के लिए गिरकर शून्य हो गया, अब तक का पहला शून्य बेंचमार्क, और स्पॉट चार्ज गहराई से नकारात्मक हो गए, लगभग -$60 प्रति टन। जब स्मेल्टर असल में अयस्क प्रोसेस करने के सौभाग्य के लिए भुगतान कर रहे हों तो कच्चा माल दुर्लभ है। टैरिफ और आगे की तस्वीर कैसी दिखती है? बुनियादी कारकों के ऊपर एक विशुद्ध 2026 का पेच बैठा है। यूएस व्यापार नीति अप्रैल 2026 से अर्धतैयार कॉपर पर 50% टैरिफ लागू है और वॉशिंगटन रिफाइंड कॉपर पर एक चरणबद्ध शुल्क पर विचार कर रहा है। जनवरी 2027 से 15% और 2028 में बढ़कर 30%, जबकि एक अहम कॉमर्स रिपोर्ट जून के अंत में आने वाली है। इस संभावना ने धातु को यूनाइटेड स्टेट्स की ओर खींचा है, जहां ट्रेडरों ने टैरिफ से बचने के लिए अनुमानित 5 लाख टन गोदामों में जमा कर रखा है, जिससे लंदन के मुकाबले कॉमेक्स कीमतों का एक लगातार प्रीमियम खुल गया है। इन सबके बीच विश्लेषक समुदाय रचनात्मक बना रहा है। सिटी जून 2026 में पूरी तरह बुलिश हो गया। उसने एक महीने के भीतर लगभग $14,500 प्रति टन और एक साल के भीतर $15,000 का पूर्वानुमान दिया। बैंक ऑफ अमेरिका बोफे 2027 का औसत लगभग $13,500 आंकता है और शिखर अनुमान $15,000। गोल्डमन साक्स, जिसने अपने निकटवधि लक्ष्य बढ़ाकर लगभग 13,700 के दायरे में कर दिए हैं, अब भी 2035 तक $15,000 देखता है और मॉर्गन स्टैनले व जेपी मॉर्गन अपने लक्ष्य 10,600-12,500 की रेंज में रखते हैं। सब में साझा सूत्र यह है कि आज की कीमत, जो पहले से ही रिकॉर्ड के पास है, उसे छत के बजाय एक पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि डेफिसिट भावना से नहीं बल्कि भौतिकी और लीड टाइम का परिणाम है। जोखिम असली हैं चाइना के प्रॉपर्टी सेक्टर में और गहरी मंदी, कुछ वायरिंग में सस्ते एल्यूमिनियम का प्रतिस्थापन, स्क्रैप आपूर्ति में वृद्धि और ऊपर बताए वही टैरिफ विकृतियां। पर इनमें से कोई भी लाखों टन में मापे जाने वाले आपूर्ति अंतर को घोल नहीं देता। भारत का नजरिया। भारत के लिए कॉपर की कहानी असामान्य रूप से सीधी है, क्योंकि देश वैश्विक कमी के गलत पक्ष पर है और इसे ठीक करने की होड़ में है। 2018 में क्यूटिकोरिन में वेदांत की स्टरलाइट स्मेल्टर के अचानक बंद होने से घरेलू क्षमता का लगभग आधा हिस्सा मिट गया। तब से भारत रिफाइंड कॉपर का शुद्ध आयातक रहा है। कैथोड आयात 2017 में लगभग 39,000 टन से बढ़कर 2024 में 3 लाख टन से अधिक हो गया और देश का कुल कॉपर आयात बिल अब सालाना लगभग $10 बिलियन तक पहुंचता है। मांग आज के लगभग 1.7 मेट्रिक टन 17 लाख टन से बढ़कर 2030 तक 3 मेट्रिक टन 30 लाख टन से अधिक, यानी लगभग दोगुनी होने की राह पर है। उसी ग्रिड, ईवी और नवीकरणीय धक्के के बल पर जो बाकी दुनिया को चला रहा है और भारत की प्रति व्यक्ति कॉपर खपत लगभग 0.6 किलोग्राम बनाम विश्व औसत 3.2 किलोग्राम, यही बताती है कि रास्ता कितना लंबा है। घरेलू जवाब अब शुरू हो चुका है। मुंद्रा में अडानी की कच्छ कॉपर स्मेल्टर, जो दुनिया का सबसे बड़ा एकलस्थल कॉपर प्लांट बनने वाली है, अपना पहला 500,000 टन चरण चालू कर चुकी है और दशक के अंत तक 10 लाख टन का लक्ष्य रखती है, जबकि हिंडल्को, हिंदुस्तान कॉपर और एक पुनर्जीवित होती वेदांत इस धक्के को पूरा करती हैं। बढ़ती हुई दिक्कतें भी हैं। भारत के नए गुणवत्ता नियंत्रण नियम अब केवल मुट्ठी भर प्रमाणित कैथोड आपूर्तिकर्ताओं को मान्यता देते हैं और देश के नए स्मेल्टर अयस्क के लिए जूझ रहे हैं। कथित तौर पर अडानी और हिंडल को फीड सुनिश्चित करने के लिए पेरू में कॉपर एसेट्स खोज रहे हैं। निवेशकों के लिए कॉपर एक ट्रेड से कम और भारत के तथा दुनिया के इलेक्ट्रिफिकेशन में सबसे अहम भौतिक इनपुट को थामने का एक तरीका अधिक है। निचोड़। तीनों धातुओं में से कॉपर शायद सबसे साफ संरचनात्मक केस पेश करता है, क्योंकि इसके बुलतर्क को न डर की और न मौद्रिक नीति की मदद चाहिए, बस उन तारों की जिनसे आधुनिक अर्थव्यवस्था बनी है। निकटवधि का संतुलन एक छोटे सरप्लस और एक छोटे डेफिसिट के बीच सिक्का उछाल हो सकता है, पर आने वाला दशक नहीं है। मांग इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रिडों और एआई डेटा सेंटर्स की बिल्कुल नई भूख से ऊपर खींची, जबकि आपूर्ति गिरते अयस्क ग्रेड, गायब हो चुकी खोजों, 18 साल के लीड टाइम और खदान व्यवधानों की एक श्रृंखला से रुकी हुई है। जो विश्लेषक इसकी कीमत लगाकर जीते हैं, वे आगे ऊंची कीमतें देखते हैं, और भारत इस कमी की राह में उसके सबसे तेजी से बढ़ते खरीदारों में से एक के रूप में ठीक बीचोंबीच खड़ा है। कॉपर वैश्विक चक्र के साथ झूलेगा, जैसा हमेशा से होता आया है, पर डॉक्टर का दीर्घकालिक निदान काटना मुश्किल है। दुनिया को इस धातु की उससे कहीं अधिक जरूरत पड़ने वाली है जितना वह फिलहाल पैदा करना जानती है। यह निवेश सलाह या कॉपर अथवा किसी प्रतिभूति को खरीदने या बेचने की सिफारिश नहीं है। कीमतें पूर्वानुमान और विश्लेषकों के विचार संदर्भ के लिए बताए गए हैं और तेजी से बदल सकते हैं। कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले कृपया एक पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।